कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म सर्वपुरुष ये खुद कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये तो कहते हैं श्री कृष्ण जी ने गीता बोला। पुनात्माओं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता बोला, गीता का ज्ञान कहा। श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने श्रीमद् भगवद् गीता में क्या कहा था। अपने आत्माओं, इस दास का जो ज्ञान है परमात्मा दिया हुआ, कबीर परमेश्वर ने बताया दास को, तो ये ऐसा अटपटा लगेगा आपको क्योंकि आपने कोरा अज्ञान ग्रहण कर रखा है कि ये क्या कह रहा है। श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। तो पुनात्मो, यहीं पर बात बिगड़ रही थी बताई कि सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था जो कबीर भगवान ने, उस दानक जो लाया कबीर ने, जो काशी के अंदर थे भगवान आए थे, जिसको आज ये दास केवल उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान आप तक पहुंचा रहा है। दास का और कोई रोल नहीं है, इतना रोल है कि जो सदग्रंथों में लिखा है उस लेखक के विचार आपके रूबरू कराता हूं, जो परमेश्वर ने आकर ज्ञान दिया वो आपके रूबरू कराता हूं, इन दोनों का निष्कर्ष निकाल कर आपको देता हूं, आपको दिखाकर बताता हूं कि ये ऐसा है ये ऐसा है, और फिर इन नकलियों के विचार सुनाता हूं, इनकी द्वारा लिखी अनुभव की पुस्तक आपके रूबरू कराता हूं, और फिर आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे सदग्रंथों से मेल नहीं खाते, जो विधि भगवान की भक्ति की या ज्ञान भक्ति का, तो यूजलेस है, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। दास का ये सब कुछ करके, ये प्रयत्न इतना करके, ये इतना चाहता हूं कि तो आप जी सदमार्ग को ग्रहण करें, कुमार्ग को त्याग दें। आपने जाना अपने घर को और आप जा रहे हो जंगल की ओर, वन में जा रहे हो, वहां खा जाएंगे चित्ते और शेर वगैरह आपको, वहां पर भयंकर जानवर है, और कोई आपको बता रहा है कि ये दिशा आपकी ठीक नहीं है जिधर तुम जा रहे हो, तो वो प्रयत्न गलत नहीं, आप ना समझ सको वो आपकी अपनी सोच होगी। तो दास का प्रयत्न इतना है। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान ये श्री कृष्ण मान रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने दिया, ले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, आपको दिखाते हैं वो विवरण जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, और समझदार को संकेत ही काफी होता है। इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर के कोड वर्डों को भी पहचानना शुरू कर देते हैं। अब देखिएगा संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक तथा संशोधक ये हैं जय दयाल गोविंद का, जो श्रीमद् भगवत गीता जी के भी अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ठीक, अब इस पे दिखाते हैं आपको कि श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं है गीता जी में उसने बोला क्या था। ये द्वितीय खंड है इसका, द्वितीय खंड, ये द्वितीय खंड है महाभारत का, संस्कृत महाभारत का, और इसके 667 पृष्ठ पे हम आपको दिखाएंगे। जन्मे जय ने पूछा, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, कृष्ण सहित अर्जुन जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सबजनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। यानी जो गीता जी का ज्ञान आपने युद्ध के समय सुनाया था वो फिर सुना दे, मैं भूल गया, अर्जुन कह रहा है। अब वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। अब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अपने आत्माओं विचार करो, इसमें श्री कृष्ण जी का कितना रोल है गीता के ज्ञान में, ये तो स्पष्ट हो गया है। जैसे कोई प्रेत किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके बोलता है, आप यहां देखते हो, हमने तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका, वो प्रेत पता नहीं क्या क्या कहता है, मैं तुम्हारा ये लगता हूं, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, तुम मेरा ऐसे कर दो वैसे कर दो। फिर जब वो निकल जाता है तो जिस आत्मा में वो, जिस शरीर में वो प्रवेश था, जिसके नाम वो शरीर है उस आत्मा के नाम, तो वो जब अपने होश में आता है फिर उसको अन्य ही बताते हैं कि आप नो बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे कह रहे थे, उसको कुछ याद नहीं होता मैंने क्या बोला था, क्योंकि वो बोल खुद नहीं रहा था, कोई प्रेत आत्मा बोल रही थी उसके अंदर। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यू काल बोल रहा था। अब देखो ये दास सत्संग कर रहा है इस विषय पर, और आप सुन रहे हो, जो प्रथम बार कोई श्रोता इस ज्ञान को सुनेगा वो मुश्किल से 20% याद रख सकता है, और मुझसे कभी सुन लेना, क्योंकि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं, और यदि कुछ दिन के बाद आप कहो कि आप उसी विषय को सुनाइए जो आपने उस दिन सुनाया था, और मैं आपसे कहूं तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तुमने याद क्यों नहीं रखा, और मैं कहूं कि मुझे तो वो स्मरण होना संभव नहीं है पूरा पूरा, ये क्या मतलब हुआ? श्रोता सारा याद रख सकता है और वक्ता को याद नहीं? इति सिद्धम श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, और फिर कहता मैंने परमात्म तत्व का ज्ञान कराया था, फिर श्री कृष्ण परमात्म की तरह गया, इसने बोला ही नहीं था वो ज्ञान। अब आगे इसने इसके बाद फिर अपने सत्र की गीता बोली है, वो कितर आसपास भी कोई ना गीता और ये ज्ञान का इसी प्रसंग में आगे बोल रखा है, मैं अब सुनाता हूं तुझे अपने विचार, वो विचार इसके हैं इसी 667 पृष्ठ पे द्वितीय भाग में महाभारत के अंदर आगे काफी वर्णन लिख रखे हैं, वो इसके आसपास भी नहीं है वो गीता। तो पुणात्मा इस प्रकार ये दास जो कहना चाहता है उसको गहराई से सोचो समझो, इससे स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, इसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला। अब ये गीता ज्ञान दाता उस परमात्मा के डर से गीता का जो ज्ञान दिया है वो वेदों वाला ही दिया है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसने अटकलबाजी करी है युद्ध करवाने के उद्देश्य से, और वो ज्ञान जो इसने कुछ इसके अंदर ज्ञान गीता जी के अंदर अपने सत्र का भी कहा है, वो ज्ञान अपने आप पता लग जाता है कि वेदों वाला ज्ञान नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में ये कहता है कि अर्जुन यदि तू समाधि लाकर बैठ गया, कर्म सन्यासी होना काम छोड़ के एक स्थान पर बैठ के और भक्ति करण लाग जा, यदि तू कर्म सन्यासी हो गया तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, तू तेरा पेट कैसे भरेगा, काम नहीं करेगा तो। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में ये अपने सतर की भक्ति बताते हुए कह रहा है कि तू मेरा स्मरण भी कर हर समय में और युद्ध भी कर, यानी युद्ध से कठिन कोई काम नहीं होता, उसमें भगवान का स्मरण करना अनिवार्य है, यानी काम करते करते भी स्मरण करो, ये तो है विधि वेदों की। फिर इसने 6 अध्याय के और 6, 7, 8 में 9 में ये फिर अपने सतर की 9, 10, 11 में अपने सतर की बोली है इसने, ये इसका अपना मत है, ये स्थान स्थान पर कहता है कि ये मेरा मत है, इसके मत को छोड़कर बाकी जो ज्ञान है वो वेदों वाला है, और वेद का ज्ञान इस काल को ब्रह्म को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने दिया था, 5 वेद जो इसके अंतःकरण में फीड कर दिए बीज रूप में, और समय आने पर वो बाहर आए, जैसे गर्भ रहता है मादा को और समय आने पर फिर वो अपने आप बाहर आ जाता, उसके बस की बात नहीं, ऐसे इस काल के अंदर परमात्मा ने ये 500 वेद बीज रूप में फिट कर दिए थे, समय आने पर ये अपने आप इसकी श्वासों के माध्यम से बाहर निकलाए, और ये देखकर हैरान रहा, फिर देखा उसने पढ़ने लगा तो इसने देखा कि 5वां वेद जो है ये तो तेरी जड़ उखेड़ देगा, तेरी पोल खोल देगा, इसने उसको छुपा दिया, शेष 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए। तो वेदों का जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, और गीता में जो ज्ञान है वो भी वो ही गॉड गिवन ज्ञान है, लेकिन इस काल गॉड ने, इस काल भगवान ने कुछ अपने सत्र की मिलावट कर दी, वो दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर आपको दिखाते हैं, हम 4 से शुरू करते हैं, श्लोक 4 से। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न कर्मों को त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य योग निष्ठा को प्राप्त। अब पांचवे में क्या कहा है, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब छठे में, तीसरे अध्याय का छठे में, ये छठा है, जो मूढ़ मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी दम्भी कहलाता है, तथा ये सातवां, किंतु हे अर्जुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके तो अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, यानी काम करते करते भक्ति करता है, वही श्रेष्ठ है, इसका अर्थ ये। फिर आठवें में क्या कहा है, यहां इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, शास्त्रों में वर्णित जो कर्म है भक्ति के वह कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म न करने से तो शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अब इससे सिद्ध हो गया कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, इसलिए तू शास्त्र अनुकूल जो साधनाएं वो कर। फिर इसने छठे अध्याय के अंदर अपना मत बताया है जो इसके विपरीत है, ये देखिएगा अध्याय नंबर 6 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 10 में, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एक स्थान पर स्थिर होकर, देख लिया इसके विपरीत कर दिया ना, अकेला ही एक स्थान पर स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लावे, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मश है, यानी ऐसी व्यवस्था करे कुसा मृगशाला और वस्त्र बिछे हों, पहले डाब घास ऊपर, फिर मृग की छाल हिरण की खाल उसके ऊपर, फिर वस्त्र बिछावे, यू कह रहे हैं। न ऊंचा हो वो आसन, न बहुत ऊंचा हो और न नीचा हो, बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आत्मा को स्थिर स्थापन करे, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करे। बोलो, फिर आगे लिखा है छठे अध्याय का ही, हमने 12वां पढ़ लिया, अब हम 13वां पढ़े, कि काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर, नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी वर्तमान स्थित भय रहित भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित वाला मेरे प्राणत होकर स्थित होए। अब इसमें क्या कहना चाहा है इस गीता ज्ञानदाता ने, वहां तो ये कह रहा है कि अर्जुन यदि कोई हठ पूर्वक इंद्रियों को रोकना चाहता है और हट करके बैठ जाता है, वो बैठा तो दिखाई देता है जैसे ये बड़ा निश्चल है, लेकिन अंदर से इंद्रियों के ही स्मरण में लगा रहता है, और यदि तू एक स्थान पर बैठ गया काम करया नहीं तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, कहने का भाव ये है उसने कहा कि तू काम भी कर और भक्ति भी कर। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट किया है कि तू युद्ध भी कर मेरा स्मरण भी कर, तो वहां क्यों नहीं कहा कि आसन ला ले एक जगह बैठ जा, ऊंचा नीचा कर ले आसन, नाक के आगे देखे जा, इतने को ठोक दे तीर, तो ये सब इसकी अपनी लोकवेद है, दंत कथा है, इसकी मिसगाइड करने के लिए कि ये भक्ति से दूर हो जाए, भक्ति कर ना सके। और फिर पहले तो आसन में से डाब लाओ, फिर मृग की खाल लाओ हिरण की, फिर उस पर वस्त्र बिछाओ और फिर नाक के आगे ध्यान लगाओ। और इसका सारा टोटल रिजल्ट क्या है? इसका परिणाम ये बताया कि अंतकरण की शुद्धि के लिए और मन न रोक ले। फिर आगे से पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, मन को रोकना तो बड़ा कठिन है। तो फिर आप पे कहता, हाँ भाई ऐसा है, मन को रोकना तो वायु को रोकने के तुल्य है। फिर यहां कैसे कह रहा है कि तुम मन न रोक कर भक्ति कर ले? जब मन न रुक गया तो फिर रोलाए के फिर तो पारे हो गया आदमी। इस मन को रोकने के लिए ही ये क्रियाएं और ये ज्ञान बताया जाता है जो सूक्ष्म वेद में भगवान ने बताया। इससे दूर कर दिया इसने मानव को, आठवें अध्याय के और सातवें श्लोक में ये खुद कह रहा है कि तू मेरा सिमरण भी कर और युद्ध भी कर। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और यहां ये 7 मंत्र है, ये रहा ये 7। इसमें कहा कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा श्रवण कर और युद्ध भी कर। मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त से होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये है वेद ज्ञान। वेद ज्ञान क्यों है? क्योंकि वेद में भी लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है, जो श्री कृष्ण में बोल रहा है। तो वेद ज्ञान दाता क्यों कहा गया? क्योंकि इसको ज्ञान ग्रहण हुआ अंतःकरण में और इसके अंतःकरण में ये फीड है और एक बाहर भी कॉपी आ गई, जैसे कंप्यूटर के अंदर होती है, अंदर भी रहती है सेव और बाहर भी कॉपी उसका डाउनलोड कर ली जाती है। तो वहां से जो वो बोल रहा था उस समय वेदों का ज्ञान जो इसने सुनाया अन्य को, तो वो सही बोला। जब इसने युद्ध करवाना था, अटकलबाजी करनी थी, बाद में इसको पता लग गया कि या तो इसमें भी बहुत कुछ निर्णय है, तो इसने अपनी अटकल साथ लगा दी और वो ज्ञान वेद ज्ञान गॉड गिवन है। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम नाम का जाप कर्तु समर, किल्वे समर और कर्त्युम समर, वायु अनिलम अथिदम बसमांतम शरीरम। ओम कर्तु समर, किल्वे समर और कर्त्युम समर। क्या बताया है कि ओम नाम के जाप को काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सुमरण कर और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर, जिससे क्या होगा कि जब तेरा शरीर नष्ट होगा, भस्म होगा, तेरा शरीर समाप्त होगा, उस समय तुझे इस ओम नाम के जाप से मिलने वाली जो राहत है, जो गति है, वो उतना अमृतव प्राप्त होगा। और यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और जो इसको अंतिम श्वास तक सिमरण करता है, शरीर त्याग कर जाते समय तक, तो मेरे वाली यानी परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम से मिलने वाली परम गति, वो ब्रह्म लोक है, वो ओम से मिलने वाली परम गति। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं, उनकी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। अब आपको यजुर्वेद से रूबरू कराते हैं। ये यजुर्वेद है प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मैर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके अनुवादक महर्षि दानंद, आर्य समाज प्रवर्तक, मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये 40वां अध्याय है, 4400 अध्याय, 40वां अध्याय। और इसका ये जो मंत्र है, 15वां मंत्र है, इसमें क्या लिखा कि वायु अनिलम, अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तो समर, किल्बे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, कर्तो माने काम करते करते, किल्बे माने विशेष करबलाहट के साथ, कसक के साथ, और कर्तुम माने कर्तव्य समझकर, अपना मनुष्य जीवन का कर्तव्य समझकर सिमरन कर। इस अनुवादकर्ता ने, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से अज्ञानी था, मैं ऋषि दयानंद नाम नाम का मैं ऋषि था, इसने कख नहीं पता वेदों का। ये भी ब्राह्मण था, संस्कृत बचपन से पढ़ा करता था, संस्कृत से भाषण करता था, बोलता था, जिस कारण से विद्वान प्रसिद्ध हो गया, महर्षि प्रसिद्ध हो गया, इसने कख नहीं पता था। अब यहां यदि इसको पता होता तो ये अनुवाद ऐसा नहीं करता। हे कर्म करने वाले जीव, कर्तो माने काम करने वाले, ओम कर्तो समर, कल्बे समर, कर्तुम समर। ओम नाम का जाप, इस ओम का जाप काम करते, कर्तो माने काम करते करते सिमरन कर, कल्बे माने विशेष कसक के साथ सिमरन कर इस ओम को, और कर्तुम मनुष्य जीवन का कर्तव्य जानकर सिमरन कर। और इस अज्ञानी ने कैसे अनुवाद किया है देखिएगा। हे कर्तो माने हे काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर का स्मरण कर। कल देखो इसकी, ओम नहीं लिखा, ओम का अर्थ सीधा लिखना था, इस ओम को स्मरण कर ना, इसने अर्थ कर दिया नाम वाच्य ईश्वर। अब इसने अपने विधान बताया था कि नाम जाप करने कोई लाभ नहीं होता, ये अज्ञानी का विधान था इस दानंद का। अपने आत्माओं, अब साथ साथ इन अज्ञानियों के अनुभव की पुस्तकें भी आपको दिखाई जाएंगी, तभी आप महसूस करोगे सचमुच रामपाल सच्ची कह रहा है ना। तीन ये तो आपके हृदय में समाये बैठे हैं, ये कति अकेत तो बड़े विद्वान थे। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, जिसके विषय में क्या लिखा है ये सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक, ये इनके जीवन काल के विषय में लिखा है कि सन 1824 से लेकर सन 1883 तक 59 ईयर ये जीवित रहा। इस सत्यार्थ प्रकाश के विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणे समन्तः, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने? श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य। इतनी तक फीत इसका आगला रखी है, फिर महर्षि दानंद गए, दानंद महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके विषय में कहा कि वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों से इस महर्षि दानंद द्वारा लिखा गया है। प्रकाशक वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये छपी कहां से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब देखना इसके 263 पृष्ठ पे 11वां समुल्लास, एकादश समुल्लास है, यानी 11वां समुल्लास 263 पृष्ठ पे यहां क्या लिखा है। किसी ने प्रश्न किया इसे, परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है, भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते हैं तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है कि तो परमात्मा को निराकार बतावे है, तो हम उसकी मूर्ति बना ली, उसने उसकी उस मूर्ति के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका फिर याद आ जाता भगवान। तो महर्षि दानंद कहता है जब परमेश्वर निराकार है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती, जो मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर की बनाई पृथ्वी जलाधि को देखकर अग्नि तो नहीं हो जाए। फिर आगे क्या कहता है, जो मूर्ति को न मान परमेश्वर को व्यापक माने और उसके डर से कि मुझको परमेश्वर देखता है पाप ना करे, स्मरण करने से कुछ नहीं होता, नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता, नाम यानी नाम का जाप करने से कुछ नहीं होता। जैसा कि मिश्री कहने से मुख न मीठा और नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु उसको जीभ से चाखने से मीठा व कड़वा होता है। नाम लेने से की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है, वह इस प्रकार है। फिर यू विधि बताओ है, ऐसे श्रवण करो, भगवान का नाम लो। इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्याकारी ईश्वर का नाम है, और जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे नामों के अर्थों को अपने में धारण करें। अपने अस्माओ इनकी या इंग्लिश आप नहीं समझ सकते, दास समझे यू के बोलना चाहो, यहां पर आप समझते होते तो पहले पता लग जाता है कि किसा महर्षि है, इसने ये कहा है। जैसे प्रश्नकर्ता कह रहा है कि हम मूर्ति इसलिए बना रखी हमने कि सारा दिन काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, फिर कभी भगवान दिख जाता है तो उसका नाम जाप कर लेते हैं, कुछ देर तो करते हैं, उसके जी रस्ते में जा रहे हैं, मंदिर मूर्ति दिख गया तो भगवान की याद आई, उसका नाम स्मरण कर लिया हमने। तो यू कहता है कि नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता। जैसे मिश्री मिश्री करेंगे यानी ओम ओम करते रहे तो मिश्री कहते मुंह मीठा नहीं होता, यानी इसका क्लियर कर दिया इसने कि ओम नाम के जाप करने से कोई लाभ नहीं होता। फिर अपनी विधि बताई है कि नाम का स्मरण करना तुम्हारा गलत है, विधि गलत है, उस परमात्मा का स्मरण करो। कैसे? कि वो न्याकारी है, सबको यथावत न्याय देता है, सृष्टि का रचने वाला है, बस इतना स्मरण करो, ओम नाम का जाप नहीं। इसके इस व्याख्यान का ये अर्थ बनता है। यही कारण था कि इसने अपना ओम नाम का जाप किया नहीं, क्योंकि इसको ज्ञान तो था नहीं, दृढ़ता इसको थी नहीं कि कौन सी भक्ति ठीक है, संशय में था, इसलिए कितने कुछ एंडवेंड बोला है। एक जगह इसने क्या बता रखा है, इनके जीवन चरित्र में किसी को कहता है कि सचिदानंद नाम स्मरण कराया कर, यानी इसको ज्ञान तो था ही नहीं, इसके जीवन चरित्र में लिखा है। तो कहने का भाव इसे सिद्ध हो गया कि ये ओम नाम के जाप के स्मरण करने के पक्ष में नहीं था। अब फिर आते हैं यजुर्वेद पर, और क्लियर हो जाएगा। इसके ही अनुवाद में वेद कह रहे हैं कि स्पष्ट कह रहे हैं, वेद प्रमाण है कि ओम नाम का जाप करे, ओम काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक के साथ स्मरण कर, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर स्मरण करे। और ये अज्ञानी यहां भी यही इसी दृष्टिकोण से अनुवाद कर रहा है कि ओम नाम के स्मरण की कोई आवश्यकता नहीं। देखो फिर हम आगे यजुर्वेद पर। अब यजुर्वेद है इस दानंद द्वारा अनुवादित है, इस आर्य समाज प्रवर्तक दानंद के द्वारा ही प्रकाशित को अनुवादित है, और यहां से ये मुद्रित है, यहां से ये प्रकाशित है। हम इसके फिर आगे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 44वें अध्याय 40वां 15वें श्लोक पर यहां देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ओम कर्तो समर, कर्तो का अर्थ ये खुद कर रहा है, कर्तो माने काम करने वाले जीव, इसका अर्थ यह है काम करते करते, ओम कर्तो समर, काम करते करते स्मरण करो ओम नाम का, किल्बे समर और कर्तुम समर, विशेष कसक के साथ स्मरण करो और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर इसका सेवन करो। तो इस यहां वायु अनिलम, आपके शरीर में जब तक ये शरीर प्राण है, जीव है, श्वास है, इससे अथिदम अंत में बसमानतम शरीरम अमृतम, जो अमृत इस ओम नाम से होगा शरीर छोड़ने तक सेवन करते रहना, इससे वो उतनी परम गति अवश्य होगी, अमृतव अवश्य प्राप्त होगा। और ये क्या कह रहा है, काम करने वाले जीव तू शरीर छोड़ते समय ओम लिखा स्पष्ट, इस ओम को गोलमोल कर दिया, यहां लिखना था ओम को स्मरण कर, इसने लिख दिया इस नाम वाच्य ईश्वर को जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर, नोट ओम को, क्योंकि काल ने याद करे, यो किसान आकारी है काल, आपको बताई दिया भगवान ने, तो स्मरण कर अपने सामर्थ्य के लिए परमात्म और अपने स्वरूप का श्रवण कर, कर्तम अपने किए का श्रवण कर, अपने किए का ये ज्यादा अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इसका श्रवण कर। ये वाक्य दिखाने की जरूरत है नहीं। अब गीता ज्ञानदाता आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में भी यही कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण मामनुस्मरण ये प्रयाति तदनदेहम सयाति परमाम गति। मेरे ओम नाम का जाप, मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, नथिंग एल्स, इसका श्रवण काम करते करते श्रवण करो, जो अंतिम श्वास तक जो श्रवण करता हुआ इसका इसका त्याग करता शरीर को, तो मेरे आली परम गति को प्राप्त होता है, ब्रह्म की परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति होता है, यह ब्रह्म का मंत्र है। और इसी का समर्थन दुर्गा जी कर रही है। दुर्गा देवी की जो भक्ति करते हैं वो साधना भी गलत है, व्यर्थ है, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। अब देवी खुद कह रही है कि ब्रह्म किस का जाप करो, ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके संपादक कौन है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहां से छपी है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। ये 27-3005 इनका कोई कोड नंबर है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये दुर्गा जी यानी सातवां स्कंद है और सातवें स्कंद का 36वां अध्याय प्रारंभ होता है, 35वां यहां एंड हो गया। देवी खुद हिमालय राजा को उपदेश ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है। क्या कहती है? श्री देवी जी कहने लगी पर्वत राज इस प्रकार योग युक्त होकर, पहले किसी ने अपने बारे में बताया, फिर बताती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुह में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद और परम प्राप्य है। अब देखो वह है समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिष्ठ में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। इसका कहने का भाव यह है कि अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम नाम से ब्रह्म का स्मरण करे, इसका सिद्धार्थ आगे देखो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यानी देवी जी अपनी पूजा को भी रिजेक्ट कर रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। उसी यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने की यह सुलभ का यही सुलभ साधन है। जिस यहां आ जाते हैं, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओह, ओम का जप करना है। और वो नैडी अज्ञानी कह रहा है मैं ऋषिदानंद कि ओ जिसका ओम नाम है उसका श्रवण करो। इस परमात्मा का ओम का जप करो और ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति है। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है यह कनिष्ठ क्लियर करती है। हम 200 563 पृष्ठ पर आगे है, गीत वही है, नोकिनो सातवां स्कंद है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अंडरस्टूड कि उसको प्राप्त हो जाओगे जो ब्रह्म लोक में ब्रह्म रहता है, किसे ओम नाम के जापते। इससे सिद्ध हो गया कि ओम नाम के जप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद राय इसके अनुवादक हैं, 8वां अध्याय आपको दिखाते हैं, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, ये 8वां अध्याय, 8वें का पहले तो आपको दिखाते 13वां श्लोक, ये 8वां अध्याय का आपको 13वां श्लोक दिखाते हैं, जिसे स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्म बोल रहा है गीता जी को। ये 13वां इसमें लिखा है, ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। इसको संधि छेद करके लिखा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। इन्होंने यहां से शुरू किया है, ओम ओम यहां शुरू किया, ओम इति एक अक्षरम, इति ओम इति एक अक्षरम, इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता हुआ वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब देखो एक अक्षर रूप ब्रह्म को ये अनुवाद ही न करना था, फिर बात क्या थी। इसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, केवल यह एक ओम अक्षर है नथिंग एल्स। व्यवहारण माने उच्चारण करके सिमन करता हुआ, यह प्रयाति तजन देहम जो शरीर त्याग कर जाता है इसका नाम जाप करता हुआ ओम का, सयाति परमाम गति वह परम गति को प्राप्त होता। वो परम गति क्या है ओम से, अभी आपने श्री देवी पुराण में देवी के श्री मुख कमल से सुन लिया कि ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है और वो ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है। अब 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी ने कहा है ब्रह्म लोक पर्यंत, ये सभी पुनरावृत्ति में है, इनके जन्म और मृत्यु सदा बना रहेगा। ये देखिएगा हम फिर 8वां अध्याय का आपने 13वां पढ़ दिया, अब 16वां पढ़ते हैं। ये 16वां, हे अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति में है। ये देखो इन्होंने इस शटार लगा रखा है, इसका यहां टिप्पणी करी है, अर्थात पुनरावृत्ति का अर्थ क्या है, पुनरावृत्ति कैसे कहते हैं, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। अब इन्होंने क्या चतुरता की है कि इसमें लिखा कि आना पड़ता है, फिर यहां लिख दिया कि हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत कर दिया। विद्यते का अर्थ केवल होता होता नहीं होता, विद्य माने जानना भी होता है, जो नहीं जानते, न विद्यते जो ये नहीं जानते। ये देखिएगा कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावृत्ति न अर्जुन न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते, ये अर्थ है माम उपेतु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन जन्म मरण होता ही है, पुनर्जन्म होता है, जो ये नहीं जानते, क्या नहीं जानते कि अभुवन लोकात अब्रह्म भुवनात् लोका ब्रह्म लोक तक सभी लोक पुनरावृत्ति में है, वहां जाने के बाद फिर पुनर पीछे संसार में आना पड़ता है, जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है। अगर हम इसका अनुवाद इनके द्वारा किया हुआ सत माने तो ये सारे मंत्र गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक ये देखिएगा, दूसरा अध्याय गीता जी अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, इसमें क्या कहा कि न तो ऐसा ही है अर्जुन, ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं होंगे रहेंगे, अर्थात आपका और मेरा और इन सब राजाओं का आगे भी जन्म हुआ है पहले और फिर भी होगा, इससे सिद्ध हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता तेरे और मेरी जन्म मृत्यु सदा रहेगी। फिर देखना अब चौथे अध्याय का 5वां श्लोक दिखाते हैं, ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5, इसका अर्थ यहां पर किया इन्होंने। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर 9वें श्लोक में क्या कहा है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा है, अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये 2 श्लोक है, मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला से प्रकट होने को, मेरी उत्पत्ति को इसको छोड़ दो, न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता का जन्म तो होता है, लेकिन इससे उत्पन्न हुए जन्म में ये ब्रह्मा विष्णु महेश यानी देवता और ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि इसके पुत्र हैं ये। अब जैसे पुत्र की उत्पत्ति को, संतान की उत्पत्ति को पिता तो बता सकता है, लेकिन पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, उसका दादाजी बता सकता है। तो उस दादाजी ने यानी कबीर भगवान ने, सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से गति करके आके यहां उस यथार्थ ज्ञान को अपने प्यारे हंसों को दिया, प्यारी आत्माओं को दिया, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इनको विशेष ज्ञान दिया था। अन्य को भी ज्ञान यथार्थ ही दिया है, लेकिन कंप्लीट वो नहीं उनको, या उनकी लिपिबद्ध नहीं कर सके होंगे। इनकी वाणी में बहुत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान विस्तृत विस्तार के साथ है। अब ये तो सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता सर्वशक्तिमान और अजर अमर अजन्मा नहीं है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसकी जन्म मृत्यु यानी इसके माता पिता कौन है, और फिर वो अविनाशी परमात्मा कौन है जिसके बारे में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32-34 प्रकरण का ये निष्कर्ष है कि उसमें लिखा है 32वें श्लोक में चौथे अध्याय के में कि उस सच्चिदानंद गण ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर के यथार्थ ज्ञान दिया है धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, अर्थात अध्यात्मिक ज्ञान उस परमात्मा के द्वारा बोले गए अध्यात्म ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए, और उसके उससे मैं परिचित नहीं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर बोला है और वो लिपिबद्ध किया गया है, वो सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी, वो कबीर वाणी है, उस कबीर वाणी को अर्थात उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करना, प्यार से बात विनम्र होकर प्रश्न करना जब वो यथार्थ ज्ञान बताएंगे। तो यथार्थ ज्ञान जानने के लिए उनसे पूछने को कहा है, फिर क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के 1 श्लोक में कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के वो सभी विभागों को जो बता देगा, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, ये तीनों शाखा कौन भगवान है, पत्ते कौन है, और मूल भगवान कौन है, सवेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये तत्वदर्शी संत यानी जगत गुरु की भूमिका की थी, और उन्होंने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सर पुरुष कहो, निरंजन ज्योत निरंजन कहो, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और जड़ वो खुद थे, मूल वो संसार की खुद थे, जैसे पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता वो वृक्ष कहलाता है, और गुप्त रहती हैं वो जड़ें। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यानी अंतिम मंत्र है, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है 17वां, और 40वां अंतिम अध्याय है। 40वें अध्याय का 17वें श्लोक में इस महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है, उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, परोक्ष है। ये देखिए, फिर यजुर्वेद थोड़ा सा दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है वही जो दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा, और ये वहीं से प्रकाशित है, ये सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन 2/5, महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स इसके मुद्रक हैं, 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। यह 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है, और ये अंतिम श्लोक चल रहे हैं। 15वें में तो यह वेद ज्ञान दाता खुद कहता है कि मेरा तो ओम नाम है, इसका स्मरण कर। और यहां ये 17वें श्लोक में, ये 17वां श्लोक में कहा है कि हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुद से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, यानी वेद ज्ञान दाता से कोई और है पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा है वह परोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, वह तो गुप्त है। और अहम अहम मैं ब्रह्म, इन्हें अनुवाद गलत कर रखा है। यहां देखो, सो असौ अहम यो है वह अहम, असौ अहम ओम खम ब्रह्म, वह अहम मैं आकाश में रहता हूं, खम माने अंतरिक्ष में, और ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वह पूर्ण परमात्मा है जो सूर्य मंडल में यानी ऊपर तेजों में लोकम रहता है, वो परमात्मा है, वह परोक्ष रूप है, और मैं अहम और मैं खम के तुल आकाश के तुल ब्रह्म हूं। अब अर्थ नहीं करा इसका, और मैं ब्रह्म लिखना था, और ओम नाम है मेरा, ऐसा जानो। अब हमारे सदग्रंथ सही हैं, जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी से कहा था, हे भगवान आप को तो हमने पहचान लिया और देख लिया, आप सर्वशक्तिमान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, आपने प्रत्यक्ष दिखा दिया, इनसे वार्ता करवा दी है, और इनके बारे में वेदों और कतेबों में जो लिखा है कि सर्वशक्तिमान है, अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, तो क्या ये वेद कतेब तो फिर झूठे हैं भगवान? तब परमात्मा ने कहा था कबीर साहब ने, ये वेद और कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाई, इनमें वेदों और पुराणों में कितना नहीं, कहीं नहीं लिखा कि ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करो या हरे राम हरे कृष्ण नाम जाप करो, ये मूर्ख बना रहे तुम्हारे को। इन्होंने खुद स्वीकारा है इस श्री देवी भागवत में 3 स्कंद में 123 पृष्ठ पर लिखा है, भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है ब्रह्मा शंकर और मेरा, हम अविनाशी नहीं, हमारी जन्म मृत्यु होता है, दुर्गा हमारी माता है। तो भाई वेद पुराण और गीता में तो ठीक लिखा है, पर इनको ये समझ नहीं सके, ये झूठे हैं, ये वेद कतेब और गीता झूठी नहीं। तो यहां क्या बताया है, 15वें अध्याय के 1-4 श्लोक में बताया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, यानी ऊपर गुप्त है वो जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, ऊपर के 4 लोक हैं, सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक, वो तो प्रोक्ष है, किसी की दृष्टि में नहीं आते, और नीचे के उसके बाद क्या अक्षर पुरुष ये तना समझो, और सर पुरुष एक मोटी डार निकलती है, और फिर तीनों देवा शाखा, तीन शाखा उस डार के यानी ज्योति निरंजन के पुत्र हैं ये सर पुरुष के, और फिर आगे पात रूप संसार, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिला है तत्व ज्ञान से समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक का ये निष्कर्ष है। और गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो और किसी की मत करना, वही पूज्य है, सारे ब्रह्मांडों की रचना उसी ने की, अपनी भक्ति को भी ये मना कर रहा है यहां पर। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यार कहने का भाव यह गीता ज्ञानदाता से, अन्य कोई और शक्ति है परम शक्ति जो सर्व सुखदायक पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी साधना भक्ति करने से फिर जन्म मृत्यु प्राप्त नहीं होती और फिर वो सनातन परम धाम को चला जाता है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी नहीं आते। और ये ब्रह्म लोक गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जो खुद कहता है मेरी भक्ति भी नाशवान है, मैं भी नाशवान हूं, मेरे ओम नाम से प्राप्त परम गति वो अपने आप नाशवान होगी क्योंकि ब्रह्म लोक में गए प्राणी फिर वापस आते हैं। इसलिए परमात्मा कबीर साहब की महिमा को आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभी का। वो कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। बोलो सतगुरुदेव।